Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana 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 तस्माद् वाय तस्माद् विज्ञानमयाद् अन्योवंतर आत्मा आनंदमया तेनैष पूर्णः सेवायेष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्ष प्रमोद उत्तरः पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। हमारी यात्रा भीतर की ओर हो रही है। जो सबसे पीछे बैठा हुआ है आत्मा के रूप से, जिसको प्रत्येक आत्मा या प्रत्येक आत्मा बोलते हैं, उसकी तरफ हमारी यात्रा है। हमारी माने मैं जीव, शरीराभिमानी मैं, मुझे मालूम करना है कि ये प्रत्येक आत्मा क्या है। क्या मैं ही प्रत्येक आत्मा हूं, और क्या इस प्रत्येक आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नाम की वस्तु है, जिसको शास्त्र में बड़े जोर शोर से गाया गया है, या इसी का एक नाम ब्रह्म है। इस तरफ हमारी यात्रा हो रही है। तो सबसे बाहरी वस्तु, पहले जो स्टेशन है वो अन्नमय कोश का है, फिर उसके बाद प्राणमय का, फिर मनोमय का, फिर विज्ञानमय का। यहां तक तो गाड़ी आ गई नारायण, अब दो स्टेशन बीच में और हैं और फिर मंजिल है। जब ये गाड़ी में कहीं जाते हैं ना, और मान लो पता ना हो तो लोगों से पूछते हैं कौन सा, कितने स्टेशन और पड़ेंगे, तो मालूम मैंने इतने आ गए इतने रह गए, तो मंजिल के निकट पहुंचने की त्वरा रहती है। तो अभी ये आनंदमय और अज्ञानमय, ये दो कोश अभी बाकी हैं, विज्ञानमय तक तो आ गए। माने ये जो विज्ञाता है, जिसको कर्ता बोलते हैं, विज्ञाता ही कर्ता होता है। जो जानेगा नहीं वो इच्छा भी नहीं करेगा, जो इच्छा नहीं करेगा वो कर्म भी नहीं करेगा। तो जानाति इच्छति करोति, ये तो तीन उसके क्रम हैं करने के, लेकिन जो एंटिटी है, चीज है, वो तो करता ही है। करने वाला है तो पहले जानेगा, फिर इच्छा करेगा, फिर कर्म करेगा। तो ये कर्ता जो है, इसी को विज्ञानात्मा या विज्ञान में पुरुष बोलते हैं। हम क्यों करते हैं, आखिर करने की मजबूरी क्या है? तो भीतर कुछ न कुछ कुल बुलाता है कि हमारे पास ये नहीं है, ये प्राप्त होना चाहिए, इसलिए करते हैं। कोई हाथ पैर पीटता बैठा हुआ फिर हाथ पैर चलाता रहे, इसका नाम करना नहीं है। एक महिला थी तो उसके छोटे लड़के का नाम गगन था। पंजाबी महिला थी तो वो गगन तो बोलती नहीं थी, गगन बोलती थी। तो ऐसे अपने बच्चों की सभी तारीफ करती हैं, तो बोले हमारा गगन बड़ा एक्टिव है। मैंने कहा भाई क्या एक्टिव है, हम तो देखते थे, हमारे ही मकान में रहते थे। मैंने क्या एक्टिव है, बोले उसके पास काम भी नहीं होता है कोई, तो अभी हाथ को यों करता है। अब ये हाथ को यो यो करना जो है यही एक्टिवनेस की क्या पर सूचक है। तो बिना बात के कोई क्रिया नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य रहता है, चाहे मनोरंजन ही हो। तो ये कर्तापन हमारे में क्यों आया? क्योंकि हम अपने को भोक्ता समझते हैं। सुख चाहिए हमको। अब सुख की परिभाषाएं सबकी अलग-अलग अलग-अलग हैं। कोई धन में सुख मानता है, कोई परिवार में सुख मानता है, कोई यश में सुख मानता है, कोई सामाजिक कार्य करने में सुख मानता है। तो कुछ भोगना है इसलिए कर्ता बने रहते हैं। अगर ये होता हो जाए किसी के मन में कि अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना तो सब शिथिल हो जाएगा, वो कुछ फिर कर नहीं पाएगा। शंकराचार्य भगवान जो अपने बातचीतों में कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी होता है वो कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कोई अदृष्ट फल की इच्छा ही नहीं है। कर्म माने ये क्रिया को कर्म नहीं बोलते, ये शास्त्रीय कर्म जो हैं, जो लोक परलोक से जुड़े हुए हैं उनको कर्म बोलते हैं। तो बोले वो जो तत्वज्ञानी है वो उन कर्मों को नहीं कर सकता। महाराज आप मंदिर क्यों नहीं जाते? अच्छा भाई, महात्मा ने कहा कि हम नहीं जाते हैं, तुम्हें क्या परेशानी? कि नहीं जाना चाहिए, महात्मा को तो जरूरी जाना चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा तुम क्यों जाते हो? तो अब क्या बतावें कि हमने ये मन्नत मान रखी है। आप बिहारी जी के मंदिर में जैसे जाते हैं ना, वहां वृंदावन में, तो जाके खड़े हुए बिहारी जी के सामने और सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। भगवान के विग्रह को नहीं देखते, सामने जाके खड़े हुए और आंखें बंद। तो आंख बंद करके क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी कि विग्रह को अपने भीतर लाते हैं, वो भीतर भीतर जो है अपनी डिमांड पेश करते रहते हैं। हे भगवान, अब के तो हमारा ये काम बन ही जाना चाहिए, हे भगवान ऐसा कर दो। और अगर तटस्थ हो के आप देखें ना उन दर्शनार्थियों को, तो कोई कान पकड़ेगा, कोई यों करेगा, कोई यों करेगा, आंख बंद है सब। तो वो जो भीतर भोक्ता सजग है वो अपने आप क्रियाएं करता रहता है। ये शरीर में भी पलक गिर रहे हैं, सांस चल रही है, खून दौड़ रहा है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं, इनके पीछे भी भोक्तृत्व ही है। जब प्रारब्ध चुक जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां अब भोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस आनंद में कोश, ये विज्ञान में कोश का आत्मा है। माने हम कर्ता क्यों बनते हैं? क्योंकि हम भोक्ता अपने को मानते हैं। तो भोक्तृत्व को आनंद में पुरुष या कोश बोलते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर भोक्तृत्व नहीं होगा तो कर्तृत्व जागृत नहीं होगा, और अगर कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व पहले से मौजूद है। और यही मूल ग्रंथि है, और कोई ग्रंथि नहीं है। बताओ किसके पैरों में क्या नाम है बेड़ियां पड़ी हुई हैं, किसके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है? न किसी के गले में फंदा है, लेकिन सब कहते हैं हम तो बंधन में। तो काहे के बंधन में? तो ये भोक्तापन जो है ना, यही असली बंधन है। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहू निरंतर तास उर, सो राउर निज गे। वाल्मीकि ने जब स्थान बताए भगवान को रहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको हम एक ऐसी जगह बताते हैं कि वहां से फिर आपको कहीं जगह दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सो राउर निज गे, वो आपका अपना पर्सनल हेडक्वार्टर है। कौन सा? बोले जाहे न चाहिए कबहू कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं। और तुम सन सहज सने, बोले फिर हमसे क्यों प्रेम करते हो? कि बस प्रेम करते हैं, चाहिए हम आपसे कुछ नहीं। बसहु निरंतरता सुर, आप उसी के हृदय में बराबर वास कीजिए, वो आपका अपना घर है। अच्छा, भगवान गीता में कहते जरूर है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, या भर्ता भोक्ता महेश्वरा, अपने को भोक्ता बताते जरूर हैं, मगर वहां सब जगह व्याख्या जो है, जहां अधियज्ञ की व्याख्या में करनी है तो वहां भोक्तारम यज्ञ तपसाम ऐसा बोलेंगे। अगर उस यज्ञ के फल का कोई भोक्ता नहीं है तो किसके लिए आप हविष दे रहे हो? तो कस्म क्या है वो, कस्मिन देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हम ये हवन कर रहे हैं? तो इसका भोक्ता तो होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं अलग अलग देवताओं के बजाय ये मान लो कि सब यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूं। तो कस्मिन देवाय मत बोलो, महाराज जी तो कहते थे कि इसमें ए का लोप हो गया है, एकस्मिन देवाय हविषा विधेम, उस एक के लिए ही हम ये आहुति डाल रहे हैं। मगर ये मत कहने लगना कि मैं ही इसका भोगता हूं। बोलो तो मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं ही भोगता हूं, तो ब्रह्म भोगता नहीं होता है ना। भोक्ता जो होता है वो उपास्य ईश्वर होता है, जिसके लिए हम कर्म करते हैं। गीता का सारा जोर इसी बात पर है कि अपने लिए कर्म मत करो, ईश्वर के लिए कर्म करो। तो एकस्मिन देवाय हविषा विधेम, एक के लिए ही हम ये हविष दे रहे हैं, वही प्रसन्न हो। बोले भी प्रसन्न, शंकराचार्य जी ने तो लिखा है कि जो निष्काम कर्म योगी है वो ये भी नहीं चाहता है कि भगवान मेरे से प्रसन्न हो। आप देख लेना भाष्य में, बोले कि बस जैसे नौकर होता है ना, पर मालिक प्रसन्न हो या ना हो उसे तो वो करना है। इंटरव्यू लिया नौकरों का, नौकर रखना था, तो मालिक ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, दे आए। बोले फेंक दो। ठीक है, फेंक दिया। बोले क्यों फेंका जब लाए थे? तो बोले आपने कहा इसलिए फेंक दिया। बोले ठीक है जाओ। तो दूसरे से कहा क्यों फेंका? बोले कि आपने कहा था इसलिए फेंक दिया, आप फिर कहते हो फिर ले आता हूं। बोले तुम जाओ। तीसरे को आया तो बोले क्यों फेंका? बोले हमारा काम क्यों का नहीं है महाराज, हमारा काम आज्ञा पालन का है। ये क्यों में ही तो सारा भोक्तृत्व है, हम ये कर्म क्यों करें? माने अपने भोग के लिए करें या परिवार के भोग के लिए करें? तो ये जो सातवें अध्याय का श्लोक है ना गीता में, पहला ही, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया और असंशयम समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तो वहां मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन, आसक्ति तो रखो मेरे में और मेरे योग में लगे रहो। तो वहां महाराष्ट्र ने इसकी व्याख्या की है कि जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या नौकरी के लिए नौकरी करते हैं या बिजनेस के लिए बिजनेस करते हैं? परिवार के लिए नौकरी करते हैं, आसक्ति तो है हमारी परिवार में, और काम करते हैं जिसके नौकर हैं हम उसका, तो इसी प्रकार से जब फल भी परमात्मा का हो उसका भोक्ता भी परमात्मा ही हो और परमात्मा की आज्ञा से ही करते हो तब वो कर्मयोग बनता है। उसमें क्यों लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं, बोले ईश्वर की आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। बोले इसका फल कौन भोगेगा कि हे भगवान आप प्रसन्न हो जाओ तो हमको ये दे देना, ये भगवान से वो भक्ति वक्ति भी कुछ नहीं मांगता। जो निष्काम भक्त होते हैं ना वो कहते हैं आप हमको चाहे कुछ भी करो। वो राबिया जो हुई है भक्ता, तो वो कहती थी खुदा से कि अगर मैं किसी कामना से आपका भजन करती हूं तो आप मुझे जिंदगी भर नरक में डाल देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इसलिए भजन नहीं करती कि मुझे सुख प्राप्त हो, भजन करना मेरा कर्तव्य है, आपकी आज्ञा है इसलिए भजन करती। तो ये भोक्तृत्व कोष जो है ये एक ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये एक ही व्यक्ति के दो पक्ष हैं। जब भोग चाहता है तो करता है और जब करता है तो भोग की इच्छा भी होती है और भोगता भी है, उसका फल का भोगता होता है। तो एक हुआ आनंदमय कोष, आनंद का विकार। यहां आनंद शब्द तो दिया है लेकिन कन्फ्यूजन ये होता है कि ब्रह्म का स्वरूप भी आनंद है और यहां आनंदमय में भी आनंद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म के आनंद को यहां आनंदमय बता रहे हैं। अभी ये शंका आगे उठाएंगे शंकराचार्य भगवान। तो यहां आनंद का मतलब सुख है। सुख और आनंद में ये फर्क होता है कि सुख जो होता है वो किसी न किसी उपाधि से होता है। उसमें महत्व बुद्धि होनी चाहिए, सुख बुद्धि होनी चाहिए और वो उपाधि भी होनी चाहिए। अब मीठा बहुत अच्छा लगता है लेकिन शुगर का रोग है, तो रोग होने के कारण वो मीठा खाएगा भी तो जीभ तो उसे लपलपाएगी लेकिन उसे मजा नहीं आएगा क्योंकि उसमें दोष बुद्धि उसकी हो गई है। तो आनंद में क्या है कि उपाधि भी होनी चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, उसमें महत्व बुद्धि भी होनी चाहिए कि मीठा जरूर खाना चाहिए और सुख बुद्धि भी होनी चाहिए, मीठे में बड़ा सुख है, तब वो भोक्तृत्व जो है वो उच्छलित होता है। तो यहां आनंद का मतलब है सुख, ये सुख का कोष है। ब्रह्मानंद के बारे में तो यह कि हमें पता ही नहीं है, ये तो शास्त्र में पढ़ते हैं इसलिए कोई ब्रह्मानंद बोलता है, कोई परमानंद बोलता है, कोई भूमानंद बोलता है, ये एक पर्याय तो है ना सबके सामने, लेकिन ये सब परोक्ष वाची शब्द बने रहते हैं। और सुख सबको अनुभव है, चींटी मच्छर भी ऐसा नहीं है जिसको सुख न मालूम पड़ता हो, साक्षी भाष्य है सुख है। और इसी सुख दुख के भोग के लिए ही तो ये शरीर मिला हुआ है सबको, ये कर्म का फल है, उपासना का फल है। कर्म का फल स्थूल होता है, उपासना का फल सूक्ष्म होता है। एक बालक था तो खिलौनों से खेलता था, अब बाप उसका साइंटिस्ट था तो पिता से कहे कि आप ये किताबें छोड़िए, मेरे साथ खिलौनों से खेलिए। वो कहता बेटा तुम खेलो, अब हमारे इसमें हमको मजा नहीं आता है। तो काहे में मजा आता है कि हमको चिंतन में मजा आता है। तो उस स्टेज को प्रकृति ने आउटग्रो कर दिया, अब वो लौट करके आप बचपन में नहीं जा सकते। लेकिन आखिर को प्रकृति आउटग्रो कर रही है, तो इसको धार देने के लिए, इसको रफ्तार देने के लिए ये संकल्प शक्ति जो भगवान ने दी है मनुष्य को, इससे ये रफ्तार तेज हो जाती है। अरविंद घोष महाराज ने लिखा है कि प्रकृति जिसको लाखों वर्ष में विकास करके पूरा करेगी, मनुष्य अपने 10-5 वर्ष में उसको पूरा कर सकता है। संकल्प शक्ति में इतना बल है, उसकी विकास की गति जो है वो तीव्र हो जाती है संकल्प से। तो आनंदमय का मतलब है सुखमय, सुख का विकार है। अच्छा, लड्डू खाने का सुख एक सुख है और रोटी खाने का सुख दूसरा सुख है, कौन सा श्रेष्ठ है भाई? तो जिसकी जिसमें महत्व बुद्धि है वही श्रेष्ठ है। लड्डू से स्वाद तो आपको आएगा, पेट नहीं भरेगा, पेट तो रोटी से ही भरना है। भूखे को रोटी चाहिए, लड्डू मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन रोटी चाहिए। तो सुख जो है वो लड्डू का अलग नहीं होता है, रोटी का सुख अलग नहीं होता है, लेकिन उपयोगिता सबकी अलग-अलग अलग-अलग होती है। तो एक हुआ सुख, रोटी खाने में वही सुख है, लड्डू खाने में वही सुख है, भूखे रहने में वही सुख है, ये तो इसको तो बोलते हैं सुख सामान्य, माने कोई विशेष सुख नहीं, उपाधि वाला कोई सुख नहीं, सब में जो विराजमान रहे और सबसे जो अछूता रहे उसको सामान्य बोलते हैं। ये सामान्य जाति के अर्थ में आता है। और एक होता है सुख विशेष, एक सुख सामान्य और एक सुख विशेष। तो ये जो विशेष होता है बस इसी से भेद बन जाते हैं। पैसे का सुख अलग है। मान लो एक सज्जन थे तो वो कहते थे हमसे, वो मां साहब बोलते थे, तो कहते थे मां साहब कोई पैसा थोड़े खावे, सब रोटी खावे, मगर जिसके पास पैसा होए उसकी छाती फूली रहे। ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा छाती कैसे फूली रहती है? बोले जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपके पास टिकट ना हो तो आपको ये डर रहता है कि टीटीआई इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो उसकी निगाह जो है वो दरवाजे पे ही लगी रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है, कहीं से आ ना जाए चेकिंग हो जाएगी। और जिसके पास टिकट है वो अपना शांति से बैठा है, जब आएगा जब दिखा देंगे। तो ये पैसा जो है ये संसार के कामों की टिकट है, ऐसा वो बोलते थे। जब जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे से अपना काम कर लेंगे। है तो ये संसारी दृष्टिकोण, लेकिन ये इस पैसे में सुख बुद्धि स्थापित कर देते हैं। इसको उपयोगितावाद ही बोलते हैं, यूटिलिटी वैल्यू। एक महात्मा थे तो उनको कोई 5 अशर्फी दे गया, पुरानी बात है तो सच्ची बात। तो पहले महात्मा लोग जो थे वो जो झाड़ी वाड़ियों में रहते थे तो अपरिग्रही भी होते थे और पैसा छूते भी नहीं थे। अच्छा, हमने देखे भी हैं महात्मा, स्वामी वामदेव जी महाराज थे तो वो पैसा छूते नहीं थे। एक आदमी आया तो वो उसने कुछ देना चाहा, उन्होंने मना कर दिया। तो चलते समय एक 5 रुपए का नोट जो है वो चटाई पे बैठे थे तो चटाई के नीचे को सरका गया। अब थोड़ी जब वो चला गया, वो पढ़ा रहे थे उस समय वामदेव जी महाराज, थोड़ी देर पीछे बोले कुछ काट रहा है नीचे से। तो ऐसा लगा कि कोई कीड़ा बीड़ा होगा, तो वो जो शिष्य थे विद्यार्थी, उन्होंने कहा महाराज आप खड़े हो जाओ तो इसको झाड़ देते हैं। तो उसको चटाई जब झाड़ी तो उसमें से वो 5 रुपए का नोट निकला। अरे बोले यही बिच्छू था जो काट रहा था। माने अपरिग्रह की भी एक अवधि जो है महात्माओं में पाई जाती है, उनका कोई काम रुकता भी नहीं है। और इसके विपरीत जो गृहस्थ हैं वो अपना बैंक बैलेंस बना कर रखते हैं, पता नहीं किस समय किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो ये आनंदमय कोष जो है ये सुख का पर्याय है। आप यदि किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनसे सुख चाहते हो तो वो चाहते ही आपको जबरदस्ती सुख के कोष में डाल देती है। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे कोई ना कोई सुख अनुभव ना हो? सुख सबको प्रत्यक्ष है, लेकिन ब्रह्मानंद परमानंद भूमानंद आत्मानंद इसको तो सब यही कहते हैं कि तो अज्ञात है, जाना हुआ नहीं है। तो नारायण ब्रह्मानंद और ये आनंदमय में जो अंतर है वो बस इतना ही अंतर है जैसे गुड़ खाने में भी वही इक्षु का रस है, ईख का, गन्ने का। गुड़ खाओ तब भी गन्ने का रस का ही स्वाद है, और चीनी खाओ तब भी और मिठाई खाओ तब भी वो गन्ने का जो मिठास है बस वही मिठास तो हम लेते हैं। तो यदि उस गन्ने का मिठास गन्ना आपको मिल जाए तो आपको सारे सुख प्राप्त हो गए।